यशाया अध्याय 21। आइए हम यशाया की पुस्तक अध्याय 21 निकालें। इस अध्याय के आरंभ में बाबुल के संबंध में यशाया अपनी भविष्यवाणी करता है। बाबुल को इस अध्याय में समुद्र के पास का जंगल कहा गया है। यशाया अध्याय 21 पद 1। समुद्र के पास के जंगल के विषय भारी वचन, जैसे दक्षिणी प्रचंड भावंडर चला आता है। नेगेव के रेगिस्तानी स्थानों में सूरज की गर्मी के कारण भावंडर आते हैं, जो घूमते हुए गोले के समान सब कुछ साथ लेकर आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे दक्षिणी प्रचंड भावंडर चला आता है। यशाया अध्याय 21 पद 1 से लेकर 3 तक। वो जंगल से अर्थात डरावने देश से निकट आ रहा है। कष्ट की बातों का मुझे दर्शन दिखाया गया है। विश्वासघाती विश्वासघात करता है और नाशक नाश करता है। हे एलाम, चढ़ाई कर, हे मादे, घेर ले। उसका सब कराना मैं बंद करता हूं, इस कारण मेरी कटी में कठिन पीड़ा है। मुझको मानो जचा की पीड़ाएं हो रही है। मैं ऐसे संकट में पड़ गया हूं कि कुछ सुनाई नहीं देता। मैं ऐसा घबरा गया हूं कि कुछ दिखाई नहीं देता। इस दर्शन के प्रभाव के कारण वो अपने शरीर में कष्ट का आभास करता है। घटना के 200 वर्ष पूर्व, जबकि इतिहास में उस समय मादे एक छोटा आदिवासी समुदाय था और फारस को एलाम कहते थे। एलाम एक जनजाति का नाम था। इससे पहले कि बाबुल प्रमुख विश्व शक्ति बने, ये इतिहास में अशूरों के उठान का समय था। यशाया बाबुल के विनाश की भविष्यवाणी करता है, जो मादी और एलाम के हाथों होगा। इस समय मादी और एलाम जैसी दो छोटी जातियों की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि वे विश्व शक्ति बनेंगे और बाबुल जैसे महान साम्राज्य को पराजित करेंगे। ये ईश्वरीय प्रेरणा का प्रमाण है। ये भविष्यवाणियां उस समय के अनुसार असंभव सी प्रतीत होती है, परंतु वे निश्चय ही पूरी हुई। इस दर्शन का यशाया पर प्रभाव भी बड़ा ही रोचक है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भी परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ता से बात करता था, तब उस पर शारीरिक दुर्बलता का प्रभाव पड़ता था। कभी कभी परमेश्वर की संगति का प्रभाव, जैसे कि यशाया का बल समाप्त हो रहा हो, परमेश्वर आपसे बात कर रहा हो और आपको घटनाओं का दर्शन दे रहा हो, तो इसका प्रभाव शरीर पर बलहीनता उत्पन्न करता है। दानियल कहता है कि दर्शनों को पाने के बाद विस्तार में लेटे लेटे उसका सिर किस प्रकार चकराया था और उसे ऐसा लगा। दानियल अध्याय 10 पद 8। मेरा बल जाता रहा। परमेश्वर की उपस्थिति का उसके शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ा। यशाया कहता है, मेरी कटी में कठिन पीड़ा है। यशाया अध्याय 21 पद 3 और 4। मुझको मानो जच्चा सी पीड़ाएं हो रही है। मैं ऐसे संकट में पड़ गया हूं कि कुछ सुनाई नहीं देता। मैं ऐसा घबरा गया हूं कि कुछ दिखाई नहीं देता। मेरा हृदय धड़कता है, मैं अत्यंत भयभीत हूं। जिस सांझ की मैं बाट जोता था, उसे उसने मेरी थर थराहट का कारण कर दिया है। मादी और फारस एलाम द्वारा बाबुल पर विजय के दर्शन का उस पर ऐसा प्रभाव पड़ा था, वो पेट पकड़कर बैठ गया, जैसा कि कोई स्त्री प्रसव पीड़ा में हो। उसका हृदय धड़कने लगा और वो अत्यंत भयभीत हो गया था, जिसके कारण उसकी देह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यहां यशाया द्वारा उन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है, जिनके द्वारा बाबुल पराजित होगा। वो इसका विस्तार से वर्णन अध्याय 44 और 45 में करता है। उसका नामकरण विजयी राजा है। सेनापति के जन्म के 150 वर्ष पूर्व उसका नाम भी देता है। वहां वो बाबुल के विनाश पर और अधिक प्रकाश डालता है। वो राजधानी के पतन की विधि भी लिख रहा है कि परात नदी के पानी को दूसरी ओर से निकालकर वे उसके मार्ग से प्रवेश करेंगे और चौकियां खुली होगी। अध्याय 45 में बाबुल पर कुसरू की विजय को देखेंगे। ये घटना ठीक वैसे ही घटी जैसे यशया ने कुसरू के जन्म से 150 वर्ष पूर्व वर्णन किया था। ये बाबुल के पतन से 200 वर्ष पूर्व की भविष्यवाणी है। वो कहता है कि उनके आमोद प्रमोद के बीच अचानक ही परमेश्वर ने उनके आनंद को भय में परिवर्तित कर दिया। आपको ध्यान होगा कि जिस रात बाबुल का पतन हुआ, बेलशेजर अपने नवाबों के साथ उत्सव मना रहा था। सत्य तो यह है कि वे बाबुल की अभेद स्थिति का जश्न मना रहे थे। यद्यपि बैरी ने नगर को घेर रखा था, वे निश्चिंत थे क्योंकि शहरपना 300 फुट ऊंची और 80 फुट मोटी थी। उनके विचार में बाबुल को जीत पाना असंभव था। उनका ये प्रीति भोज बैरी के मुंह पर तमाचा था। नशे की अवस्था में बेलशेसर ने अपना दादा द्वारा यरूशलेम से लाए गए मंदिर के पवित्र पात्रों में शराब पी और चांदी के देवताओं की स्तुति की। इसी कारण वो कहता है, आमोद प्रमोद की रात को परमेश्वर ने मेरी थर थराहट का कारण कर दिया। यशाया अध्याय 21 पद 5। भोजन की तैयारी हो रही है, राजा के द्वारा खान पान की तैयारी। यशाया अध्याय 21 पद 5। पहरुए बैठाए जा रहे हैं, खाना पीना हो रहा है। हे हाकिमो, उठो, ढाल में तेल मलो। प्रीति भोज के बीच में ही पुकार सुनाई देती है। ढाल पर तेल मलने से तलवार उस पर से फिसलती है, उसको काट नहीं सकती क्योंकि वो चिकनी होती है। यशाया अध्याय 21 पद 6 से लेकर 8 तक। क्योंकि प्रभु ने मुझसे यूं कहा है, जाकर एक पहरुआ खड़ा कर दे और वो जो कुछ देखे उसे बताए। जब वो सवार देखे जो दो दो करके आते हो और गधों और ऊंटों के सवार, तब बहुत ही ध्यान देकर सुने। और उसने सिमके से शब्द से पुकारा, हे प्रभु। यहां बड़ी रोचक बात है कि जब दानियल ने संसार पर शासन करने वाले साम्राज्यों को पशु रूप में देखा, जिसमें शेर बाबुल का प्रतीक है, इसलिए वो पुकार उठा, सिंह मेरे प्रभु। यशाया अध्याय 21 पद 8 से लेकर 10 तक। मैं दिन भर खड़ा पहरा देता रहा और मैंने पूरी रातें पहरे पर काटी, और क्या देखता हूं कि मनुष्यों का दल और दो दो करके सवार चले आ रहे हैं। और वो बोल उठा, गिर पड़ा बाबुल, गिर पड़ा, और उसके देवताओं की सब खुदी हुई मूर्तें भूमि पर चकनाचूर कर डाली गई है। हे मेरे दाएं हुए और मेरे कलिहान के अन, जो बातें मैंने इसराइल के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा से सुनी है, उनको मैंने तुम्हें जता दिया है। यशाया कह रहा है कि जो उसने सुना दिया कि एक पुरुष अपने साथियों के साथ आकर कह रहा है, गिर पड़ा बाबुल, गिर पड़ा। इससे हमें प्रकाशित वाक्य स्मरण आता है जहां स्वर्गदूत पुकार कर कह रहे हैं, गिर पड़ा बाबुल, गिर पड़ा। लोगों से आत्मिक व्यभिचार करने वाला बाबुल, यहां भविष्यवाणी दो बार पूरी होगी, एक मादी फारसी द्वारा पराजय और दूसरी बार अंत समय में। यशाया अध्याय 21 पद 11 और 12 के दर्शन को मैं नहीं समझता। इसका संबंध दूमा से है अर्थात एदोम से है। यशाया अध्याय 21 पद 11, सेईर में से कोई पुकार रहा है। सेईर पर्वत एदोम की सीमा है। अध्याय 21 पद 11 और 12, हे पैरुए रात का क्या समाचार है, हे पैरुए रात की क्या खबर है। पैरुए ने कहा, भोर होती है और रात भी, यदि तुम पूछना चाहते हो तो पूछो, फिर लौट कर आना। पैरुए के कहने का अर्थ क्या है मैं नहीं जानता। आगे हम पाते हैं यशाया अध्याय 21 पद 13, अरब के विरुद्ध भारी वचन। हे ददानी बठोइयों, तुमको अरब के जंगल में रात बितानी पड़ेगी। ददान एक जनजाति है, वो ददान में बहुसंख्यक जनजाति है। सऊदी अरब दो मुख्य जनजातियों का निवास स्थान था, शीबा और ददान। जब आप एहेस्केल के अध्याय में रूस और उसके मित्र राष्ट्रों द्वारा इसराइल पर आक्रमण के बारे में भविष्यवाणी पढ़ेंगे तो इस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि रूस के साथ ईरान आक्रमण करता है परंतु सऊदी अरब नहीं करता है। मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि सऊदी अरब से बहुत तेल बाहर जाता है। अमेरिका द्वारा सऊदी अरब के शस्त्रीकरण पर इसराइल भयभीत होता है। यहां चिंता का सबसे बड़ा कारण यही है कि रूस सऊदी अरब को जीतना चाहेगा, परंतु यहां स्पष्ट है कि रूस सऊदी अरब को नहीं जीतेगा। इसराइल के विरुद्ध रूस के मित्र राष्ट्रों की सूची में सऊदी अरब का नाम नहीं है, इसलिए इसराइल को सऊदी अरब के आक्रमण का भय मन से निकाल देना चाहिए। सत्य तो यह है कि सऊदी अरब उन राष्ट्रों की सूची में है जिसमें अमेरिका भी एक है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है तर्शीश के व्यापारी, जिसका अर्थ इंग्लैंड से लगाया जाता है। अपने सब एहेस्केल 38 अध्याय 13 पद, जवान सिमो समेत आते हैं। अब ये हो सकता है कि अमेरिका को इंग्लैंड का एक जवान शेर माना जाए। दूसरे हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि। इनमें से एक जवान शेर रूस से कहता है, तू क्या कर रहा है, इस छोटे से राष्ट्र पर आक्रमण करता है, ये उचित नहीं, ये अन्याय है। सऊदी अरब भी इस आपत्ति में अमेरिका और इंग्लैंड के सहयोगी राष्ट्रों के साथ है। बाइबल से हमें भविष्य का बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। मुझे जल सेना के एक सेनापति के बारे में बताया गया कि उसके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं था, बाइबल पढ़ने का समय नहीं था। उसका कहना था कि इतनी अधिक बातों में उलझने की उसे आवश्यकता नहीं है, और वो इन बातों के विरोध में ही रहता था। एक दिन उसने एक टेप सुना जो मध्य एशिया की भविष्यवाणियों की व्याख्या का था, और परमेश्वर ने उसके मन पर अधिकार लिया। अब कहा जाता है कि उसकी टेबल पर हमेशा बाइबल खुली रहती है। अब वो अपनी योजनाओं और रणनीतियों को रूपरेखा देने के लिए बाइबल से पथ प्रदर्शन खोजता है। मुझे एक सैनिक अधिकारी ने ये सूचना दी थी, हवाई में अनेक अमेरिकी सैनिक अधिकारी हैं जो बाइबल को आज के युग की पथ प्रदर्शिका मानते हैं। ये बुद्धिमानी की बात है क्योंकि परमेश्वर ने सब व्यवस्था की हुई है। परमेश्वर ने आमोस से कहा, आमोस अध्याय 3 पद 7, प्रभु वचन अपने दास भविष्यत वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ ना करेगा। परमेश्वर आज की प्रत्येक घटना को पूर्व में ही हमें कह चुका है, इसलिए यदि इसराइल बाइबल पढ़े तो उसे समझ में आ जाएगा कि वो सऊदी अरब से अपनी भूमिका निभाएंगे। उनके भय का कारण रूस और ईरान है। आज इसराइल ईरान के प्रति निश्चिंत है। सत्य तो यह है कि लोगों की विशेष करके ईरान की चिंता का कारण कि अमेरिका को अपने देश से निकाल देने के बाद वो अब भी फैंटम जेट उड़ा रहा है, जैसा कि सोचा गया था कि उनकी सेना अति शीघ्र समाप्त हो जाएगी और तब उनका ही राज होगा। बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि इसराइल उनके फैंटम जेट ठीक करके उन्हें देता है। वे अपने जेट उड़ाकर इसराइल लेकर जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ईरान और इसराइल में एक गुप्त समझौता है। इसराइल उनका एहसान मानता है, क्योंकि जब जब तेल का संकट आया तब तब ईरान ने इसराइल का साथ दिया। तेल के ही कारण इसराइल उनके जेट सुधारने का काम करता है। परंतु सावधान, इसराइल ईरान की वायु सेना को जीवित रखे हुए है। इसराइल गुप्त में ईरान से मित्रता बनाए हुए हैं। उन्हें यह समझाना आवश्यक है कि उन्हें सऊदी अरब के स्थान पर ईरान के प्रति सतर्क रहना है, क्योंकि अंततः जब युद्ध होगा तब सऊदी अरब इसराइल पर रूस के आक्रमण का विरोध करेगा, परंतु युद्ध नहीं करेगा। सत्य तो यह है कि सब कुछ आज उसी ओर बढ़ता चला जा रहा है जो बाइबल को आज के युग में अत्यधिक प्रासंगिक बनाता है, जो निर्णयों में मार्गदर्शन के लिए आवश्यक है कि किसको कैसा सहयोग दिया जाए और कैसी रणनीति बनाई जाए। अब ददानियों के लिए उसकी चिंता। एक अरब जाति, यशाया अध्याय 21 पद 14 और 15। वे प्यासे के पास जल लाए, तेमा देश के रहने वाले रोटी लेकर भागने वालों से मिलने के लिए निकले आ रहे हैं, क्योंकि वे तलवारों के सामने से वरन नंगी तलवार से और ताने हुए धनुष से और घोर युद्ध से भागे हैं। यशाया की यह भविष्यवाणी तुरंत पूरी हुई। यशाया अध्याय 21 पद 16 और 17। क्योंकि प्रभु ने मुझसे यूं कहा है, मजदूर के वर्षों के अनुसार एक वर्ष में केदार का सारा वैभव मिटाया जाएगा और केदार के धनुधारी शूरवीरों में से थोड़े ही रह जाएंगे, क्योंकि इसराइल के परमेश्वर यहोवा ने ऐसा कहा है। एक ही वर्ष में 716 ईसा पूर्व में सारगोन ने सऊदी अरब को जीत लिया था। ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है।